आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। ये जो तीन चार हफ्ते चल रहे हैं, ये चंदन यात्रा का समय है। तो हम भगवान के सुंदर विग्रह को चंदन से सुशोभित करते हैं। तो इसके पीछे बहुत सुंदर इतिहास है। तो जो इतिहास चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के चौथे अध्याय में माधवेंद्र गुणीपाद के कथा का वर्णन है, तो उस एक हम इस पर आज चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, वे हर एक अध्याय की शुरुआत करते हैं एक संस्कृत श्लोक के साथ। चैतन्य चरितामृत जो है बंगाली में है, पर जो हर एक अध्याय का प्रारंभ का श्लोक है संस्कृत में है। और उस श्लोक में वे संपूर्ण जो लीला है उसका सार उस एक श्लोक में बता देते हैं। तो ये जो स्लाइड शो है अंग्रेजी में है, तो शायद आप अगर अंग्रेजी से परिचित नहीं है तो आप ये सुंदर चित्र देख सकते हैं और भगवान का दर्शन सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए हमारा सुंदरीकरण होता है। तो ये जो इसकी शुरुआत है चौथे अध्याय की चैतन्य के सुंदर श्लोक से करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यस्मै दातुं चोरयन् क्षीरभाण्डम् गोपीनाथ क्षीर चोराभिदोहो श्री गोपाल प्रदुराशीर्वशः सन् यत्प्रेणातं माधवेन्द्रं नतोऽस्मि। तो कहते हैं नतोऽस्मि, प्रणाम करता हूँ किसको? माधवेन्द्र गुरी को। क्यों प्रणाम करता हूँ? क्या उनकी महिमा थी? यस्मै दातुं, उनके लिए भगवान ने क्या की? गोपीनाथ जी ने क्षीर भाण्डम चोरयन, उन्हें चोरी की और उसके कारण भगवान विख्यात हो गए क्षीर चोर के नाम से, क्षीर चोरा चोर। और उतना ही नहीं, यत प्रेमना, जिनके प्रेम से नियंत्रित होकर भगवान स्वयं गोपाल जी के रूप में प्रकट हो गए। श्री गोपाल प्रभुराशी वश, प्रेम में वश होकर प्रकट हो गए। तो ये जो लीला है बताया गया है कि रेमुना में जो गोपीनाथ जी का विग्रह है, आज भी हम बंगाल जाते हैं तो कलकत्ता से कुछ 5-5.5 घंटे दूर रेमुना नाम की सुंदर जगह है, वहाँ पे आज भी यह विग्रह है। रेमुना से गोपीनाथ परम मोहना भक्ति करी करी भूतारे महाप्रभु कन्या देने के बाद दक्षिण भारत जा रहे थे, जगन्नाथपुरी को जा रहे थे, तो वे रेमुना में आ गए। और यहाँ पर बड़ा सुंदर जब उन्होंने गोपीनाथ जी का दर्शन किया तो बड़े आनंदित हो गए। और फिर क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी गुरु जो थे वे थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेन्द्रपुरी थे। तो इसीलिए जो कोई भक्त होते हैं वो हमेशा जब संघ में आते हैं तो अपने वरिष्ठ भक्तों के गुणगान करते हैं। तो इसलिए ईश्वरपुरी ने माधवेन्द्रपुरी का गुणगान चैतन्य महाप्रभु को किया था। इसलिए उनको माधवेन्द्रपुरी की जो महिमा थी खासकर इस विग्रह के साथ जो लीला होगी वो पहले से पता थी। तो उन्होंने भगवान का दर्शन करने के बाद सबको जो लीला है उसका वर्णन शुरू किया। तो इस लीला के बारे में वर्णन करने के पहले हम थोड़ा जो विग्रह पूजा है, विग्रह का जो तत्व ज्ञान है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जो भगवान का दिव्य धाम है, जो अधिकांश धर्म है भव्य जगत में, वे सब बताते हैं कि ये जगत क्षणभंगुर है, इससे परे हमें भगवत धाम जाना है। तो वो भगवत धाम क्या है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, इसके बारे में अधिक वर्णन बहुत से धार्मिक ग्रंथों में नहीं है। अगर आप कुरान या बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें अनेक नैतिक मूल्य है, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अगर भगवान के वर्णन के बारे में पूछेंगे तो भगवान का वर्णन है ही नहीं। स्पष्ट रूप से बाइबल बताया जो स्वयं कहते हैं कि मैं, मुझे और बहुत कुछ कहना था पर आप सब को सुनने के लिए पात्र नहीं हूँ। मोहम्मद जी कुरान में क्या बताते हैं कि मेरे पास दो प्रकार का ज्ञान था, उसमें एक प्रकार का ज्ञान मैंने आपको दिया, दूसरे प्रकार का ज्ञान यदि मैं देता तो आपका हृदय दुख जाता, आप सहन नहीं कर पाते। तो इस तरह से वही एक उद्देश्य का धर्म, जैसे अलग अलग जो धर्म है आजकल बहुत कभी कभी संघर्ष हो जाता है, कभी कभी युद्ध हो जाते हैं, कभी कभी रायट्स हो जाते हैं, पर ये क्यों है, क्योंकि उद्देश्य एक समझने की आता है। उद्देश्य एक क्या है, अलग अलग धर्म जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के समान है, अलग अलग विद्यापीठों के समान है। अभी इंजीनियरिंग जैसे करना है तो यहाँ पे गंगा में कॉलेज है, कहीं और कोई और कॉलेज है, मुंबई में बड़ा IIT नाम का कॉलेज है, और ऐसा कॉलेज का उद्देश्य क्या है, शिक्षण देना ताकि व्यक्ति इंजीनियर बन सके या व्यक्ति डॉक्टर बन सके। उस तरह से अलग अलग धर्म जो है वो एक संस्थाएं है जिससे कि लोग भगवत ज्ञान प्राप्त कर सके और भगवत भक्ति विकसित कर सके। दो उद्देश्य, भगवत ज्ञान प्राप्त करना और भगवत भक्ति विकसित करना, यह एक समान उद्देश्य सब धर्मों का। पर जो सब धर्म होते हैं उसका एक बाह्य भाग होता है और एक अंतरंग भाग होता है। तो जैसे कोई बहुत सरल उदाहरण लेते हैं, तो कोई अगर माता पिता अपने बच्चे को गणित सिखाना चाहते हैं तो वो बच्चे को यदि आम अच्छे लगता है तो उसको दिखाएंगे ये कितने आम है, दो, ये कितने आम है, एक दो तीन, कितना हुआ, दो और तीन हुआ पांच। तो और दूसरा कोई बेटा है, दूसरे कोई माता पिता है, उनका कोई बच्चा है, उसको आम इतने अच्छे लगते हैं, उसको उसको शायद सेब अच्छा लगता है, तो फिर उसके पिता बोलेंगे कितना सेब है, ये कितना सेब है, चार, कितना हुआ, चार। तो दोनों का उद्देश्य क्या है, गणित सिखाना ही है, पर गणित सिखाने के लिए जो बाह्य चीज का उपयोग किया गया है, एक जगह पे आम का उपयोग किया है, दूसरे जगह पे सेब का उपयोग किया है, पर उद्देश्य एक ही है। तो जो लोग बाहरी दृष्टि वाले हैं उतने भी ये माता पिता अपने घर में कुछ और विषय दिखा रहे हैं और ये माता पिता कुछ और विषय दिखा रहे हैं, पर विषय एक ही है, विषय नहीं है, विषय क्या है, गणित ही है। पर वो जो जो बालक है उसकी मानसिकता के अनुसार है, जो उसके लिए औजार है, जो माध्यम इस्तेमाल किया है वो अलग है। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि सब धर्म बोलते हैं कि भगवान का सामने आदर करना चाहिए, उनका प्रणाम करना चाहिए, तो जो वैदिक शास्त्र है उसमें हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, अगर इस्लाम में है तो हाथ ऊपर करके नमाज करते हैं, क्रिश्चियन धर्म में है तो नमाज करते हैं। तो जो तत्व है एक ही है कि भगवान के लिए हमारा आदर व्यक्त करना, पर जो पद्धति है वो अलग अलग है। पर दुर्भाग्यवश जो लोगों को तत्व ज्ञान पता नहीं है वो केवल बाहरी चीजों को देखते हैं और बाह्य चीजों को देखकर वो सोचते हैं कि हमारा धर्म और आपका धर्म अलग है, तो आपके धर्म में एक भगवान को पूजा जा रहा है, हमारे धर्म में दूसरे भगवान को पूजा जा रहा है, और उसके कारण संघर्ष होता है। तो हमेशा जब हम भक्ति भी करते हैं तो हम जो उद्देश्य है वो क्या रखना चाहिए, हमें भगवान का प्रेम जागृत करना है। प्रभुपाद जी एक बार ईरान में प्रचार करने के लिए गए थे, तो ईरान में प्रचार कर रहे थे तभी वे बैठे थे, एक मुस्लिम युवक था उससे बात कर रहे थे, तभी पीछे नमाज का समय आ गया, नमाज चालू हो गया, तो प्रभुपाद जी ने बात बंद कर लिए, अपनी आंखें बंद कर लिए, हाथ जोड़ लिए और बिल्कुल ध्यान पूर्वक नमाज को सुनने लगे, और पूरे नमाज की प्रार्थना खत्म हो गई, और फिर जब खत्म हो गई तो फिर प्रभुपाद जी ने आंखें खोली, उनकी आंखें बहुत ही प्रसन्न दिख रही, प्रभुपाद जी बोले कितना सुंदर था, कितना सुंदर था। तो बात में अभी उस दिन चला गया था उसने, और तो एक भक्त जी है प्रभुपाद जी को बोले प्रभुपाद जी पर वो अगर ये नमाज भूलने के लिए हरे कृष्ण जब करते हो कितना अच्छा होता है ना। तो प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी बड़े दुखी दुखी लगे, बोले कि तुम मुझे पक्षपाती क्यों बना रहे, माया नहीं मेरी भी सीखते ही नहीं, तो मुझे पक्षपाती क्यों बना रहे हैं। और प्रभुपाद जी क्या बोले कि वे उनकी पद्धति से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम हमारी पद्धति से भगवान का गुणगान कर रहे हैं,
तत्व है वो एक ही है, तो हमें तत्व देखना चाहिए, बाह्य जो है रूप वो उससे भेद नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में जो वैदिक संस्कृति है वो हमें सब धर्मों का आदर सिखाती है। वास्तव में धर्म एक ही है क्योंकि सब धर्म भगवान से आते हैं, पर बाह्य रूप से भले ही अलग दिखाई देते हैं, वैदिक संस्कृति हमको सिखाती है कि जो भी जिस मार्ग से भगवान से वो जा रहा है उसका हमें आदर करना चाहिए। तो दुर्भाग्यवश भौतिक जगत का ऐसा स्वभाव है सकाले हम हटा, काल के प्रभाव से जो उपदेश है वो लोग भूल जाते हैं और उपदेश भूल कर बाहरी चीजों से आसक्त हो जाते हैं। तो मैं अभी बता रहा था कि कैसे हर एक धर्म का एक बाहरी अंग होता है, एक अंतरंग अंग होता है। तो बाहरी अंग अलग अलग हो सकते हैं पर जो अंतरंग उपदेश है वो हमेशा एक होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब धर्म एक ही समान है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि जो वैदिक शास्त्रों में भगवान के धाम के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के रूप के बारे में अधिक ज्ञान है, इतना ज्ञान दूसरे कुछ धर्मों में है भी नहीं। और क्रिश्चियन धर्म में अगर हम भगवान कैसे दिखते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे तो वास्तव में कोई वर्णन है ही नहीं भगवान का जीवन। तो 15वीं-16वीं शताब्दी में एक बहुत विख्यात शिल्पक थे माइकल एंजेलो नाम को, तो माइकल एंजेलो को बताया गया कि वहाँ पे इटली में एक बहुत बड़ा चर्च है सिस्टाइन चैपल नाम का, तो वहाँ पे वो जो बाइबल के अलग अलग दृश्य है उसको आप शिल्पित करो दीवार पे, ऐसे बताया। जब मैंने चालू किया तो एक चित्र था कैसे भगवान अपनी कृपा एक मानव पे दे रहे हैं, तो मानव अपना हाथ ऊपर करके कृपा दे रहा है और भगवान हाथ नीचे करके कृपा उसको दे रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। तो बनाइए रंजन ने जो मानव चित्र किया तो अच्छा अच्छा दिखने वाला सशक्त सुंदर मानव बनाया। उसके बाद में जब भगवान का चित्र करना था तो उन्होंने वहां पे पार्वती से पूछा भगवान कैसे दिखते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं, पर बाइबल में लिखा होगा, बाइबल में लिखा नहीं है। और फिर उन्होंने सबको पूछा, वहां के जो संपूर्ण विश्व के चर्च है उसके सबसे बड़े हेड थे पोप, मैंने पोप को जाके पूछा तो पोप भी मुझे हमको पता नहीं क्योंकि बाइबल में कोई वर्णन है नहीं। तो फिर माइकल ने अपना विचार किया कि भगवान कैसे देखते होंगे, तो उसने क्या सोचा कि भगवान सबसे पुरातन है, सबसे आदि है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे परिवार में होता है सबसे पहले दादा हो गए, परदादा हो गए, तो बूढ़े हो जाते हैं, तो सोचते कि भगवान को अगर दिखाने तो भगवान भी नए समय से सनातन है तो बूढ़े हो गए। तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में भगवान का चित्रण किया, वो चित्र यहाँ पे है। तो यहाँ पे इस साइड में आप देख रहे हैं एक साइड में जो है वो मानव है वो अपने हाथ ऊपर उठा रहा है, और जो दूसरी ओर है वो है भगवान। तो ये माइकल एंजेलो का विचार था भगवान, ये कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे, आज से अगर दूसरे जगह में जाएंगे तो इस तरह अभी तक वहां पे है। तो अगर ये चित्र हम देखते हैं तो एक सीधा सवाल आता है मन में कि इसमें कौन अधिक आकर्षित दिख रहा है, मानव ज्यादा आकर्षित दिख रहा है भगवान ज्यादा आकर्षित दिख रहे हैं। तो भगवान एक बूढ़े व्यक्ति जैसे लग रहे हैं जिनको बड़ी दाढ़ी आ गई है, जो मानव है जो अधिक आकर्षित लग रहा है। तो ये क्या है, कल्पना है, और ये कल्पना है और गलत कल्पना है। तो ऐसे कल्पनाओं की जरूरत हमें वैदिक संस्कृति नहीं है, क्योंकि वैदिक संस्कृति में भगवान के रूप का सुंदर वर्णन है, भगवान कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, ये सबका विस्तारित वर्णन है। तो भगवान की जो लीलाएं है वो बहुत मधुर है, पर ऐसी लीलाओं का जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में कोई वर्णन नहीं है। तो अगर वर्णन नहीं है तो दो चीजें कर सकते हैं, एक क्या है, ऐसे कुछ लोगों ने कल्पना की कि ऐसे भगवान का रूप होगा, पर अधिकांश लोग जो है धर्मों में क्रिश्चियनिटी में मुसलमान धर्मों में भी क्रिश्चियन धर्म मुस्लिम धर्म वो कहते हैं कि वास्तव में भगवान कोई रूप है ही नहीं, भगवान का कोई रूप है ही नहीं। और यहां तक कि वह बोलते हैं कि भगवान इतने विशाल है, इतने सर्वव्यापी है, उनको आप रूप दे तो सीमित हो जाएगी। पर वास्तव में यह भौतिक दर्द है, भगवान का रूप है वो आना चाहती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, इसे ये भगवान का रूप होते हुए भी असीमित हो सकते हैं। इसकी कौन सी लीला है जो भगवान ने अपने मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाया? यशोदा माँ कैसे दिखाया? वो तो छोटे छोटे थे कि वो अपने माँ के गोदी में बैठे थे।
सचिन्मयम् पालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तो पालं मुकुन्दं, जो मुकुन्द है वो मुक्ति प्रदान करने वाले परम भगवान है। पर वो क्या किया है, उन्होंने बाल रूप लिया है, उन्हें अटक कर रहे हैं, यहाँ पे वो माखन चोरी कर रहे हैं। तो वो अपनी माँ की गोद में बैठते हैं और उदाह रहे हैं कि भले ही वो माँ के गोद में बैठ के माँ के दुख का तन पी रहे हैं, माँ के तन का दुख पी रहे हैं, पर सचिन्मयम देव अनंत रूपम, उनका जो शरीर है सचिन्मय और क्या है अनंत रूपम, असीमित रूप है उनका, सीमित नहीं है। इसीलिए जब माँ यशोदा ने कहा तुम अपना मुंह खोलो, तो माँ यशोदा केवल कोई दांत और दांत भी होते हैं, बहुत से लोग थक जाते हैं चॉकलेट खा के, पर ऐसे तो दांत नहीं दिखे, क्या देखा? संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, जैसे ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड में पृथ्वी दिखी, पृथ्वी वृंदावन देखा, वृंदावन में यशोदा माई दिखी, और यशोदा माई अपने कान्हा के मुंह को देख रही है, वो भी देख रहे। तो यह लीला दर्शाती है कि भगवान सचिन्मय देव अनंत रूप, ये कैसे संभव है? ये संभव है क्योंकि भगवान का रूप भौतिक नहीं, भगवान का रूप आध्यात्मिक है। पर दुर्भाग्यवश दूसरे संस्कृतियों में, दूसरे धर्मों में ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो लोग क्या सोचते हैं कि कई बार क्रिश्चियन मुस्लिम लोग ये सोचते हैं कि अगर आप कोई भगवान के रूप की कल्पना करते हो, तो भगवान को रूप में चित्रित करते हो, तो आप एक कल्पना कर रहे हो, और क्योंकि भगवान असीमित है, तो भगवान को सीमित रूप देकर आप भगवान के प्रति बड़ा पाप कर रहे हो, आप असीमित भगवान को सीमित बना रहे हैं, और इसको ये बड़ा पाप है। तो वास्तव में हाँ जरूर भगवान असीमित है, पर अगर भगवान सही में असीमित है, भगवान सही में सर्वशक्तिशाली है, तो भगवान वो एक विग्रह के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। अगर भगवान सही में शक्तिशाली है तो कुछ भी कर सकते हैं, यदि कुछ भी कर सकते हैं तो क्या उनमें शक्ति नहीं कि विग्रह के रूप में प्रकट हो? अगर वो ऐसे नहीं कर सकते तो हम क्या कह रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली नहीं है। तो जो विग्रह की पूजा है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो हम देखते हैं कि नरसिंहदेव कहाँ से प्रकट हुए, खंभे से प्रकट हुए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि जो वैदिक संस्कृति के पालन करने वाले लोग हैं, तो कुछ भी पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं, पेड़ को पूछते हैं, पहाड़ को पूछते हैं, सबको पूछते रहते हैं, पर ऐसे नहीं है। अगर हम नरसिंहदेव किला देखते हैं तो जब प्रहलाद महाराज देखा कि उस खंभे से नरसिंहदेव प्रकट हुए, खंभे प्रधायां न मृगम न मानुषम, स्तंभ से प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो स्तंभ की आरती शुरू नहीं की, मैंने किसकी आरती की, किसको माला डाली, भगवान को माला डाली। तो वैदिक शास्त्र में बताते हैं कि भगवान सब जगह परमात्मा के रूप में मौजूद है, और जब भक्त उनको पुकारता है तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, ये भगवान की सर्वशक्ति मानता है। और कब प्रकट होते हैं भगवान? तो भला छोटा बालक भी अगर भगवान को पूछता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान का जो रूप है वह एक बड़ा विज्ञान है। अगर अगर कोई अपने मन से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो खट डालने का बक्सा होता है, एक बक्सा जो होता है सरकार बनाती है, और दूसरा आदमी जल्दी बोलता है अरे सरकार ने बनाया बक्सा है, घर बहुत दूर है, अरे घर के मैं घर के पास में एक बक्सा बना दूंगा, तो वो अपने यहाँ से इसके हाथ में आप देख रहे हैं कि पेंटिंग कर रहा है, वो एक लालची से बना देता है, अरे बक्सा बना देता है, और उसमें अपने खट डालता है, तो खट डालेगा तो क्या वो खट पहुंचेगा जिसको भेज रहा है उसके पास?
नहीं।
क्योंकि क्या है, ये जो बक्सा है उसको कोई सरकार ने मान्यता दी है, जो बक्से को सरकार ने मान्यता दी है
वह कक्षा एक साधारण कक्षा से बहुत अलग बन जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार के मान्यता से, सरकार की शक्ति के द्वारा उस बक्से में जो भी हम डालते हैं खर्च वगैरह, वह जिसके ओर भेजना है वहां तक पहुंच जाता है। ये जो है कि तभी होता है जब हम सरकार के द्वारा मान्य बक्सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक उस तरह से लोग अपने कल्पना से अनेक रूप बना लेते हैं। तो आजकल समाज में लोग मूवी स्टार जो होते हैं उनके मंदिर बनाते हैं, उनके विग्रह, उनके रूप बना देते हैं, उनके मूर्तियां बना देते हैं। आजकल भारत वर्ल्ड कप जीत गया तो जो बड़े बड़े क्रिकेटर है क्रिकेटर का मूर्ति बना देते हैं। पुणे में एक विख्यात क्रिकेटर है उसका एक मंदिर और म्यूजियम बना रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार ने 40 करोड़ रूपये उसके सैंक्शन कर दिया। 40 करोड़। अब ये क्या है? ये मनोवृत्त कल्पनिकता है। अभी अगर कोई उसके मंदिर के शब्द उसके इस्तेमाल करना है, मंदिर शब्द का अपमान है। वास्तव में भले ही वो प्रतिभाशाली हो, भले ही वो बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, उसके क्रिकेट के सक्षमता के लिए, दक्षता के लिए उसको हम जो श्रेय है दे सकते हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि वो भगवान है। इसका मतलब नहीं कि वो भगवान से सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी। तो ऐसे मनोवृत्त कल्पना से यदि कोई मूर्ति बनाता है, अगर मूर्ति को आदर सम्मान करने लगता है, उसको पूजने लगता है, तो ये व्यर्थता है। और इसका खंडन हमारे वैदिक शास्त्रों में भी किया गया है। तो कई बार कोई लोग फिल्म स्टार, मूवी स्टार, पॉलिटिशियन, राजनीतिक, इन सबके मूर्तियां बनाते हैं, उन सबके मंदिर बना देते हैं, तो इसका खंडन है। क्योंकि ऐसा कोई इसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। पर शास्त्रों में भगवान के रूप का वर्णन है और उस रूप के अनुसार जब हम भगवान का विग्रह बनाते हैं तो भगवान से उसी प्रकट जाते हैं। क्योंकि जैसे ये पोस्ट बॉक्स जो है, पोस्ट का बक्सा सरकार मान्य है, वैसे भगवान का रूप जो शास्त्र मान्य होना चाहिए, शास्त्र मान्य है तो भगवान से हम प्रकट जाते हैं। ऐसे एक और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, अगर कोई माँ होती है, वो बोलती है अपने बच्चे को कि भैया घर में अगर कहीं भी कोई कागज का टुकड़ा आपको दिख जाए तो क्या आप उसको फाड़ के आप फेंक और आप ऐसे रेट में डाले। तो उस दिन उसके पिताजी जब बाहर जा रहे हैं तो एक 500 रुपए के नोट क्या हो गए पॉकेट से गिर गई और जब गिर गई तो बच्चे ने कहा कागज गिर जाए फाड़ के लग गया। क्या कर रहा है आपने वो तो फाड़ दो, ये फाड़ना नहीं है, ये कागज नहीं है। कागज ये तो ही है, ये कागज नहीं है, ये वास्तव में लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी मुझे तो कागज दिख रहा है। अच्छा तुमको कागज दिख रहा है, तुमको क्या अच्छा लगता है? बोला मुझे इस्कॉन के मंदिर जो पेड़ मिलते हैं बहुत अच्छे। अच्छा तो ठीक है, वो कागज का टुकड़ा ले गया और वहां से पेड़ ले गया, कुछ नहीं मिलेगा, ये कागज ले लिया और पेड़ ले गया, इतने सारे पेड़ लिया। समझ गया फर्क? समझ गया। तो भले ही दोनों कागज है पर जो 500 रुपए का नोट है वो केवल कागज ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार की जो मुद्रण की प्रक्रिया है, पूरी मुद्रण व्यवस्था है, उसके द्वारा उस कागज में और शक्ति आ गई और सामर्थ्य आ गया और कागज में संपत्ति आ गई। तो वैसे ही जो भगवान का विग्रह है वो भले ही हमारी दृष्टि से वो कोई पत्थर से बनाया गया हो या मार्बल से बनाया गया हो, पर वो केवल पत्थर या मार्बल नहीं है, क्योंकि भगवान की पूजा के द्वारा, भगवान के भगवान जो हम प्राण प्रतिष्ठान का जो उत्सव है वो करते हैं, तो भगवान को बुला के कृपया प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप यहाँ पर कर्तव्य हो जाओ, भगवान कर्तव्य जाते हैं। इसीलिए वह केवल कोई कोई काल्पनिक रूप नहीं है, वह वास्तव में भगवान होते विद्यमान है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है कि वास्तव में ये कहते हैं भगवान का रूप वास्तव में नहीं है, पर क्या है कि जैसे अगर आपको राष्ट्रप्रेम दिखाना है तो राष्ट्रप्रेम भी राष्ट्र का आपको राष्ट्रप्रेम दिखाना है, प्रणाम करना है, सलाम करना है, प्रणाम सलाम करना है, तो आप कहाँ सलाम कर, राष्ट्र चारों ओर है, बोले आप झंडा बनाओ, झंडा बना लोगे क्या होगा, झंडा को देखा झंडे को और झंडे को देखा के बाद भारत का तिरंगा लेके झंडा लेके तो राष्ट्र प्रेम जागरूक होगा। तो फिर क्या है, अभी झंडा है भारत के, भारत को प्रतिनिधित्व करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वैसे ही जो भगवान का विग्रह है वो भगवान को प्रतिनिधित्व करता है, पर वास्तव में ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है ऐसे, क्योंकि झंडे में और भारत में कोई वास्तविक संबंध है क्या, नहीं। क्योंकि ये भारत स्वतंत्रता संघर्ष कर रहा था तो कुछ राजनीतिकों ने फैसला किया कि हम ये तिरंगा झंडा बना लेंगे, अगर अभी 50 साल के बाद तिरंगा आने के हम चौरंगा झंडा लेंगे तो लोग बदल सकते हैं, कोई बदलने की समस्या है, अगर लोग हम लोग शहीद रहते हैं, लोगों ने मत कर लिया कोई चौरंगा झंडा लेंगे, चौरंगा झंडा आ जाएगा। तो ये झंडा और भारत इसमें संबंध कहाँ है, केवल हमारे मन के कल्पना में, हमारे मन के कल्पना में हम सोचते हैं कि झंडा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पर वास्तव में झंडे में और भारत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति मुझे कहती है तिरंगा देखिए राष्ट्र प्रेम जागरूक नहीं होता है, मुझे अभी हमारे राष्ट्र प्रेम राष्ट्र गर्व का लक्ष्य है कि हमारे भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीते, तो हमारे फिर हमारे झंडे का क्या होना चाहिए, क्रिकेट टीम हो जाए और क्रिकेट का बैट और क्रिकेट का बॉल, तब राष्ट्र प्रेम जागरूक हो जाए, तो फिर झंडा बदल सकते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये भगवान का रूप जैसे तो आप कुछ ये तो आप इस देवता की पूजा करो, नहीं तो उस देवता की पूजा करो, तो उस देवता की पूजा करो, तो कुछ गुरु वर्ग बोलते हैं कि आप मेरी भी पूजा कर सकते हैं, तो मैं भी साक्षात्कार हूँ, मैं भी भगवान ही हूँ, ऐसे नहीं है। भगवान का एक रूप है और वही रूप शास्त्र में बताया गया, तो यह कहता है ये कहते हैं इसका उदाहरण में तो फोटो होना है, तो अगर कोई कोई दाम्पत्य है पति पत्नी है तो वो अपने पति अपने घर से दूर चले गए तो अपने पत्नी का स्मरण कर रहे हैं और फिर वो अपने पत्नी का एक फोटो साथ में रखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि वास्तव में ये फोटो इतना अच्छा है लगता है फोटो रखते पाने, तो फिर कोई फोटो वहां पर रख देंगे तो उनकी पत्नी आएगी और देखेगी तो क्या बोले क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, दूसरा फोटो रख दिया दूसरा फोटो रख दिया तो फिर पत्नी से दूसरी प्रतिक्रिया हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो फोटो और व्यक्ति में संबंध है। तो हम फोटो को झंडे को जैसे बदल सकते हैं राष्ट्र को स्मरण रखते हुए, वैसे हम फोटो को बदल नहीं सकते क्योंकि वो फोटो उस व्यक्ति को प्रतिबिंबित कर रहा है, व्यक्ति को वो केवल एक प्रतीक नहीं है, वो वास्तव में उसी व्यक्ति का चित्रण कर रहा है। तो जो उस दिन भगवान का रूप है, हम हमारी कल्पना से भगवान के रूप को बदल नहीं सकते, इस देवता को पूछना उस देवता को पूछना नहीं, भगवान का एक स्थायी रूप है और वही रूप जो है विग्रह से बनाए जाते हैं तो वही रूप में बनाए जाते हैं, तो इस तरह से भगवान स्वयं वहां पर करते हैं। ऋषि शास्त्र बताते हैं कि हमें जो रूप भगवान का बताया गया है उसी रूप में पूजना चाहिए। तो इस तरह से ये तो बहुत छोटी सी चर्चा हुई, मैंने इस विषय पर संपूर्ण किताब लिखी है आइडियल वर्शिप और आइडियल वर्शिप, तो उसके तत्वज्ञान की पूरी चर्चा नहीं करूंगा मैं, पर ये सार यह है कि जो विग्रह पूजा है ये केवल कोई भक्तरी पूजा नहीं है, स्वयं भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर भगवान है वास्तव में तो होते ही है, कभी कभी ऐसे होता है कि हम विग्रह पूजा कर रहे हैं तो विग्रह के ऊपर कोई मच्छी आ जाती है, कोई नास्तिक लोग कहते हैं कि ये भगवान है तो कुछ मच्छी नहीं आ सकते क्या, तो वास्तव में अगर यह सवाल तो प्रदेश में पहले बता रहा था कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्मों में भगवान के रूप का वर्णन नहीं है, और वो सोचते हैं कि अगर आप कोई रूप का चित्रण करते हैं तो आप भगवान के प्रति पाप कर रहे हैं। इसीलिए जब भारत मुगलों के राज में था तो उन्होंने बहुत से मंदिर उध्वस्त किए, क्यों उध्वस्त किए, क्योंकि सब काल्पनिक रूप है और कल्पना भगवान के रूप के बारे में करना वह एक पाप है। वास्तव में क्या है, केवल अहंकार है कि हमारे शास्त्रों में अगर भगवान के रूप का वर्णन नहीं है तो भगवान का रूप है ही नहीं, ऐसे नहीं है। आपके शास्त्रों का वर्णन नहीं है तो दूसरे शास्त्रों में वर्णन है, दूसरे शास्त्रों में वैदिक शास्त्रों में वर्णन उसके अनुसार बनाया गया, पर वो सोच रहे क्योंकि अहंकार का एक भाव है उसके अलावा सोचते हैं कि ये जो रूप है वो काल्पनिक है। तो कई बार वो विग्रहों वो मंदिरों को तोड़ दिया करते थे, विग्रहों को विग्रहों पर अपराध करते थे। तो भाई वो सोचेगा कि अगर सही में ये भगवान है तो कोई मंदिर ऊपर से आंच कर सकता है, कोई ऐसे विग्रहों को कुछ कर सकता है। तो वास्तव में पता चाहिए कि भगवान विग्रह के रूप में प्रकट क्यों हो रहे हैं। भगवान जो विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं एक ही उद्देश्य होता है, क्या है कि हमें सेवा का मौका देना। कि अगर हमें भगवान को पूजना है तो हम हमारे भौतिक दृष्टि से भगवान को देख नहीं सकते, तो इसीलिए अगर हमें देखना है तो भगवान एक विग्रह के रूप में। तो भगवान विग्रह के रूप में प्रकट इसलिए नहीं होते कि वे अपने सर्वशक्तिमत्ता दिखा रहे हैं। तो प्रकट क्यों हो रहे हैं? केवल इसलिए प्रकट हो रहे हैं कि हमें सेवा का मौका दे। तो हम भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं, हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान पर ड्रेसिंग कर सकते हैं, भगवान के प्रणाम कर सकते हैं। इससे क्या होता है? हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है, ऋषि के न ऋषिकेश। तो जैसे भगवान अलग अलग पद्धति से प्रकट होते हैं, भगवान कभी ग्रंथों के रूप में प्रकट होते हैं। अभी जो भगवद गीता है, श्री भागवत है, दूसरे धर्म बाइबल है, कुरान है, वे उनके ग्रंथों को भी दिव्य मानते हैं, भगवान का एक रूप मानते हैं। पर क्या वह बाइबल से कोई बाइबल या कुरान से कोई मक्खी जाके नहीं बैठ सकता है? तो अगर वो कुरान भगवान का ही रूप है तो क्या भगवान अपने शरीर से मक्खी नहीं ला सकते, अपने शरीर से मक्खी नहीं ला सकते? अगर कोई कुरान को फाड़ना चाहे, जलाना चाहे, जला नहीं सकता है? जला सकता है। तो जो भगवान बहुत सी जगह में प्रकट होते हैं वो इसलिए प्रकट नहीं होते कि मैं कैसे सर्वशक्तिशाली में दिखाने के, वो इसलिए प्रकट होते हैं कि हमें सेवा का मौका नहीं है। भगवद गीता है, कुरान है, बाइबल है, ये कैसे दिव्य है अगर समझना है हमें तो हमें सेवा भाव से उनका अध्ययन करना चाहिए, तब समझना है। तो भक्त तो अगर हमें अगर हम सेवा भाव से भगवान के सामने आते हैं, विग्रह के सामने आते हैं, तो हमें देखिएगा कि वास्तव में केवल पत्थर नहीं है, स्वयं भगवान है। और इस लीला में माधवेंद्रपुरी की लीला में हम देखते हैं किस तरह से भगवान, क्योंकि माधवेंद्रपुरी में इतना दिव्य प्रेम था, सेवा का भाव था, इसलिए भगवान स्वयं कार्यशील हो गए, न केवल प्रकट हो गए, न केवल बोले पर कार्यशील भी हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु जब रमुना में आ गए तो उन्होंने देखा कि गोपियां इतने सुंदर है, और जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम रूप और गुण यह सब देखकर सारे गोपीनाथ के प्यारे थे, आश्चर्यचकित हो गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी की कहानी सब भक्तों को बताने लगे, बताए थे माधवेंद्रपुरी जो थे चैतन्य महाप्रभु लगभग 500 साल पहले थे, तो उनके लगभग 30-40 साल पहले माधवेंद्रपुरी थे। तो माधवेंद्रपुरी ऐसे ही वो सन्यासी थे, कोई घर में ही काम करते, घर जगह जगह जाते थे। तो एक बार वे कहाँ आ गए? वृंदावन में आ गए। तो माधवेंद्रपुरी का स्वभाव था कि प्रेम मत नहीं तार रात दिन ज्ञान क्षण उठे क्षण पड़े नहीं स्थान स्थान, वो इतने प्रेम में मग्न है कि रात है दिन है कुछ भी भाव उनको भाव नहीं था, केवल भगवान के प्रेम में मग्न थे। तो वे जब मानव वृंदावन में आ गए तो गोविंद कुंड के धन्य आ गए गोवर्धन के वाल में, और वहां पे वे थोड़ा पानी पी लिया गोविंद कुंड का, आप खाने गोविंद कुंड देख रहे हैं, माधवेंद्रपुरी वहां पे है, और वहां पे जप करने लगे। और माधवेंद्रपुरी इतने वैरागी थे कि वे किसी से भिक्षा भी मांग लेते हैं, भिक्षा कोई स्वयं आगे दे देगा तो खा लेते हैं, कभी वो भिक्षा भी नहीं मांगते, उसे भिक्षा मांगने में समय जाएगा, तो क्यों समय इतना व्यर्थ रहना है। तो कभी कोई लोग सोचते हैं कि कोई दुनिया छोड़कर संन्यास लेता है या ब्रह्मचारी बन जाता है, फिर कुछ काम नहीं कर रहा है, वास्तव में काम करने के लिए समय नहीं है। भगवान की सेवा में इतना काम है, इतने सारे सेवाएं हैं, इतना प्रचार करना है कि भक्त के पास बहुत ही चीजों के लिए समय नहीं है। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी भगवान के प्रेम में इतने बिजी थे, इतने मग्न थे कि वो सोचते कि नौकरी तो छोड़ो, भीख मांगने के लिए समय नहीं है,
नौकरी करने के लिए समय नहीं
है, भीख मांगने के लिए समय नहीं है, कि क्या अगर हम कोई आएगा तो खाने को दे देंगे, तो खाने क्या जरूरत है, हम हरिनाम से पोषण कर लेंगे। पर जब इस तरह से सेवा भाव होता है भक्त का तो भगवान का हृदय जीत जाते हैं, भगवान स्वयं आ गए, छोटे से बालक के रूप में आ गए भगवान, और बोले कि मैंने देखा है कि मैं तुम्हारे लिए डूब ले गया हमारी मटके में। तो बादल को जब कर आंखें खोली तो देखा इतना सुंदर बालक था। वो देखे आकर्षित हो गए, बोले तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ रहते हो, और तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूँ। तो बालक ने बड़े रहस्य मुद्दे से बोला कि मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। फिर रहस्य ज्यादा उजागर हो गए थे, बोला तो वास्तव में आप जो यहाँ बैठते कुछ गांव की स्त्रियां हैं जिन्होंने देखा कि आप जब कर रहे हैं, आप कुछ खाया नहीं बहुत समय से, तो उन्होंने मुझे भेज दिया आपके लिए कुछ मटके में दूध दिया, आप दूध पीजिए पी लीजिए, मैं गलियों को चराने लेके जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा मटका ले लूंगा। तो माता ने पूरे दूध पी लिया और फिर मटका धो के रख दिया और इंतजार कर रहे। वो बालक जो गया अदृश्य हो गया और आया ही नहीं। और फिर जब रात को माता जी पूरी सो गए तो वही बालक उनके स्वप्न में आ गए और उसने बताया कि मैं यहीं पे मैं तुम्हारी सेवा का इंतजार कर रहा हूँ। वो बालक था गोपाल, वो एक विग्रह के रूप में है। वो बोले कि मैं जो आपकी सेवा के लिए बड़ा आतुर हूँ। अनेक साल पहले जब कुछ मेरा सुंदर मंदिर था पर तभी वहां पर मुस्लिम लोग आ गए आक्रमण करने के लिए, तो मेरा पुजारी था वो मुझे लेके भाग गया। और जब भाग रहा था तो डर गया, मुझे जंगल में रख दिया और वो भाग गया। तो और तब से मैं जंगल में ही पड़ा। तो पर अभी मैं देख रहा था कि और मेरी सेवा के लिए योग्य है, तो उस पुजारी ने त्याग दिया तो मैं उससे सेवा लेना चाहता। तो शुद्ध भक्त चाहता है कि मेरी सेवा करना चाहता है, केवल मैं उसके लिए प्रकट होना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें बहुत समय देख रहा हूँ, तुम्हारी इतनी शुद्ध भक्ति है कि मैं तुम्हारे मेरे सेवा करने की इतनी तीव्र इच्छा है, इसीलिए मैं पुनः प्रकट होना चाहता हूँ। तो जंगल में जाओ और अपने सपने में ही उन्होंने दिखा दिया। महानंदर बोली कहो क्या, ये कैसे यहाँ पे जाओगे तो वहां पे आपको मेरा विग्रह मिल जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर महानंदर पूरी आंखें खोली और उन्होंने देखा, सभी को समझ में आया जो बालक आया था वो भगवान ही थे। तो दुखी हो गए, भगवान आए तो समझा नहीं भगवान है। तो फिर बाद में सोचा कि भले भगवान का दर्शन तो मैं इस तरह नहीं कर पाया, भगवान की सेवा करने का मौका है। तो मन को संतुलित कर लिया और पास में गांव में चले गए और गांव में जाके बोले क्या हो आप सब, अभी भगवान से प्रकट होना चाहते हैं। तो जंगल में चले गए और वहां पर जो जंगल बड़ा घना था तो काफी काट फूट करने गए उनको, और जब सभी को बड़ा सुंदर विग्रह गोपाल जी का वहां मिला। तो ये गोपाल जी का विग्रह की स्थापना की पूजा चालू कर दी और माता जी ने पूरी बड़ा उत्सव किया, क्योंकि नए मंदिर बन गया है, तुमने मंदिर बना लिया, विग्रह पूजा चालू कर दी। फिर उसके बाद क्या हो गया, भगवान सुबह के सपने में आ गए। अब भगवान सुबह के सपने में आ गए और क्या बोले, माता जी ने पूरी मैं बड़ा उत्सव किया हमने, और उत्सव करने के बाद माता जी सो रहे हैं तो सपने में गोपाल जी वापस आ गए और फिर बोले कि मैं इतने सालों से धूप में पड़ा था जंगल में, उसके बाद मेरा शरीर बहुत गर्म हो गया है, तो मेरे शरीर को ठंडा करना जरूरी है, तो कृपया मुझे चंदन लगाओ। तो चंदन जो है जगन्नाथपुरी में मिलेगा, वहां से आप लेके आओ। तो जब गोपाल जी चले गए, माता जी पूरे उठे तो निकल गए, मुझे कभी कहीं आना पड़े चंदन आने के, तो पूरी जाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उस समय कोई ट्रेन या प्लेन नहीं था, पैदल जाना था। और जो वृंदावन का भाग था वो वृंदावन और बंगाल जैसा मुसलमान राजा के अंदर था, और जो उड़ीसा था वो हिंदू राजा के अधीन था। तो भले ही वहां तक पहुंच गए, धंधा और जन्म ले भी लिया, तो मुसलमान राजा से जब आ रहे होंगे तो वो तो विग्रह पूजा को मानते हैं, वो जन्म छीन लेंगे और चले गए। तो नहीं गए थे, उन्होंने क्या सोचा कि भगवान ने बोला है तो जाना ही चाहिए। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सीख है कि कैसे कई बार भक्त बोलते हैं कि भगवान मेरे सपने में आ जाएगा, तो क्या भगवान हमारे हम नारे भक्तों के सपने में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, हम नहीं बोल सकते, आ भी सकते हैं, पर उसका सबूत क्या है सपने में आ गए? अगर कोई बोलता है
एक बार प्रभुपाद जी जब हमारे काम विचार कर रहे हैं तो सब हमको बोलते आप जप करो, तो जप करो चार नियमों का पालन करो। तो एक बार भक्त है प्रभुपाद जी कल आप मेरे सपने में आए और सपने में आपने वहां कहा मुझे कि तुम ड्रग्स ले सकते नशा कर सकते। तो प्रभुपाद जी बोले वो मैं नहीं था वो माया मेरे रूप में आई। तो क्या है कि भगवान हमारे के सपने में आ सकते हैं। तो उसका सबूत क्या है कि भगवान जो गुरु साधु शास्त्र से उपदेश दे रहे हैं जो तत्व सिखा रहे हैं उसी को आगे उजागर करते हैं उदय। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ कार्य द लॉर्ड गिव्स नॉर्मल इंस्ट्रक्शन टू गुरु साधु शास्त्र एंड द पैरानॉर्मल इंस्ट्रक्शन दैट ही मे गिव टू हिज ड्रीम्स आर मेंट टू रीइंफोर्स द नॉर्मल इंस्ट्रक्शन नॉट कॉन्ट्रेरी द नॉर्मल इंस्ट्रक्शन। कि जो अद्भुत पद्धति स्वप्न के द्वारा अगर कोई उपदेश देते हैं भगवान हमें तो उपदेश क्या है कि जो हमें साधारण उपदेश दिया है उसको और बढ़ाना के लिए बढ़ा देते हैं। तो द्रौपदी का विकास होता है। कल रात को भारत जी आए थे, कल रात को भगवान ने सपने में आए थे, ठीक है। तो आज क्या भगवान से ठीक है, अगर भगवान हमारे सपने में आए तो ठीक है, अच्छी बात है, भगवान की विशेष कृपा है कि हमारे सपने में आ गए। पर उसका फल क्या है? हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, वही फल है। अगर हम कहते अगर कोई वक्त अभी तक मैं 20 साल से भक्ति करूंगी एक भी बार मेरे सपने में भगवान नहीं आए, पर 20 साल से रोज जप कर रहा है, चार नियम का पालन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो वक्त अच्छा है। वक्त कहता है कि रोज मेरे सपने में भगवान आते हैं 2 घंटे के दर्शन देते हैं, इसे 2 घंटे जप करने की कोई जरूरत नहीं, उसके कभी जप नहीं करते तो बहुत अच्छा। तो अगर बेहतर है कि हमारे सपने में भगवान ना आए और हम उसके जप करें, लेकिन हम कहें सपने में भगवान आए और उसके जप न करें। तो सपने में अगर भगवान आते भी है तो भगवान में क्या बताएंगे, भगवान की विशेष कृपा क्या है? सिर्फ सपने में दर्शन देना ही कृपा नहीं है, भगवान की सर्वोच्च कृपा ये है हमें वो सेवा करना है। तो सेवा अगर भले ही भगवान सपने में आए न आए तो भी सेवा का मौका जरूर है हमारे पास। तो वल्लभ विद्यानगर में एक भक्त थे, तो उनके सपने में भगवान आ गए और वो उनको बोले कि आपका ये बड़ा उनका बड़ा इमारत और महल था, महल में इमारत था वे कि मेरा मंदिर बनाना यहाँ पे, आप ये सारा यहाँ जाके आप भक्तों को डोनेशन दे। तो उनके ये सपना आया नहीं, सपना नहीं था नहीं किया उन्होंने। तो माधवेंद्र पूरी जब हम पहले देखते हैं, पहले सपना जो आया कि मैं यहाँ पे हूँ आओ तो मुझे निकालो और मेरा मंदिर बनाओ। तो पहले सपने के द्वारा क्या हो गया, माधवेंद्र पूरी का बड़ा माधवेंद्र पूरी का बड़ा गुणगान हो गया। तो क्या है इतने महान भक्त है, उनके सामने भगवान आ गए और उनके कारण भगवान की विग्रह सुना जा सुना हमें मिल गए, भगवान का नया मंदिर बन गया। तो पहले सपने से बहुत गुणगान हो गया उनका, पर दूसरे सपने से क्या हो गया, उनको बहुत परेशानी थी। अच्छा भी अभी वो वृंदावन में रहे थे, उनका बड़ा आदर सत्कार हो रहा था और रोज गोपाल जी का दर्शन कर रहे थे, और दूसरे सपने में भगवान ने क्या बोला, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जगन्नाथपुरी और मैं चंदन लेके आऊ। तो वो बोल सकते हैं सपना आया नहीं बात नहीं, ऐसे ही बोला है वो, क्या बोले सपना क्या है, भगवान का आदेश अतुरंत निकल गया। तो इसलिए हमें द्रौपदी जी एक बार कुछ दिनों में पहले दिनों में प्रवचन दे रहे थे, तो कई भक्त आके बोले द्रौपदी जी जब मैं जप करता हूँ तो मुझे सफेद लाइट दिखाई देता है, सफेद ज्योति दिखाई देता है, उसको लगा कि मेरे को कोई आशंका हो रहा है, मैं आध्यात्मिक प्रगति कर रहा हूँ, ये सही ज्योति दिखाई दे रही है। तो द्रौपदी जी बोले जब करते रहो ज्योति चली जाएगी। तो क्या है कि जो आध्यात्मिक प्रगति ये केवल कोई सपने में कोई दर्शन, सपने कोई दर्शन भगवान आना या कोई दिव्य दर्शन होना, बहुत आध्यात्मिक प्रगति का प्रधान लक्ष्य नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति का प्रधान लक्ष्य क्या है कि भगवान की सेवा में जुड़ता, हम चार नियमों का पालन, हम 16 मालों का जप और भगवान की जो सेवा है अलग अलग प्रकार से, आप सभी हमारे उठाता कर रहे हैं, बड़ा मंदिर बनाने वाले हैं, तो ये सब सेवा में हम जब लग जाते हैं तो वह भगवान के हमारे भक्ति का सबूत है। ऐसा कोई भी कह सकता है मैं बताया भगवान आए थे, कोई भी कह सकता है कि भगवान रोज दर्शन देते हैं, ये तो कहने में कह सकता है, कोई भी कह सकता है, पर वास्तव में सबूत ये है कि हमारे भगवान के प्रति अगर प्रेम है तो हम भगवान के लिए कितना समर्पण करने के तैयार है, हम भगवान की सेवा कितना कर सकते हैं। तो माधवेंद्र पुरी
निकल गए,
तो उनका जो बिल्कुल व्यक्तिगत संबंध था, हम एक जिला से चार शिक्षाएं देखे गए माधवेंद्र पुरी का नाम है पूरी, तो इंग्लिश में पी यू आर आया था, तो पहला जो पी है पर्सनल, क्योंकि एक व्यक्तिगत संबंध था भगवान के साथ। व्यक्तिगत संबंध क्या था कि भगवान का जो स्वप्न में आते उसने भगवान ने मुझे आदेश दिया, तो तुरंत आदेश पालन कर सकते। हमें अगर भक्त कोई बोलते हैं सेवा करो, तो सपने में आने का जो व्यवहारिक रूप से आते हैं तो हम भूल जाते सेवा करते हैं, उस दो दिन बाद याद ध्यान करते, माधव जी को एक बार सपने में आ गए तुरंत नहीं करते। तो जब जा रहे थे तो वृंदावन से आ गए बंगाल में, बंगाल में यमुना में आ गए, तो यमुना में वो गोपीनाथ जी का मंदिर था, और गोपीनाथ जी के मंदिर में बड़ा सुंदर खीर बनता है गोपीनाथ जी। तो जो भक्त होता है जब भी भगवान की सेवा करना चाहता है तो और अच्छी करना चाहता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं गोपाल जी के साथ स्वादिष्ट व्यंजन बना रहा हूँ, माधवेंद्र ने सोचा कि अगर मुझे पता चल जाए कि ये खीर कैसे बनाई जाती है तो मैं ऐसी खीर गोपीनाथ जी को गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। तो उस समय क्या हुआ था, जो भोग का प्लेट था वो भगवान को भोग लगाने में जा रहा था, तो तभी क्या हो गया, माधवेंद्र ने सोचा कितना अपराधी हूँ कि अभी भगवान को भोग लगा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ मुझे चखने को मिल जाएगा तो कितना अच्छा, और वो खुद को अपराधी मानकर वहां से उछले और वो क्या करने लगे, जब करने लगे प्रायश्चित के रूप में। पर भगवान ने अपने भक्त वत्सल है, उसको इतना प्रेम करते भक्त की छोटी छोटी इच्छा भी होते हैं वो पूरा करना चाहते हैं। तो भगवान ने क्या किया, जब वो भोग हो गया आरती लग गई तो एक जो मटका था अपने पास में, और फिर बाद में वो पुजारी के सपने में आ गए, पुजारी के सपने आके वो बोले कि मेरा एक मेरे महान भक्त माधवेंद्र पुरी उनके लिए मैंने एक मटका रखा है, जाओ लेके जाओ, और वो पुजारी उठ गया स्नान कर लिया उसने, और फिर उन्होंने उसे अल्टर खोला तो वहां पर सही है पीछे एक मटका रखा, दूसरा मटके का है पर एक मटका रहेगा, भगवान की माया शक्ति से उसने गिरे थे मटके पर गिर गया, गलती कर दी जो पहले लिया था, तो एक मटका बच गया और तुरंत चला गया। अच्छी बात है, माधवेंद्र पुरी कहाँ हो तुम, कौन हो तुम, तुम्हारे साथ भाग्यवान कोई तीनों लोगों में नहीं है, भगवान ने तुम्हारे लिए चोरी की है, भगवान ने तुम्हारे लिए चोरी की है। वास्तव में भगवान चोरी नहीं कर सकते, सब कुछ भगवान का ही है, भगवान का लिखा है उनका प्रेम लिखा है। तो माधवेंद्र पुरी ने सुना तो सामने आ गए सारी कहानी जब मैंने सुनी तो फिर क्या हो गया, सारी कहानी सुनने के बाद वो मटका लिया वो, और फिर मुझे पुजारी लगा रहे दंडवत कर रहे हो, खीर खाने लगे, खीर खा रहे थे तो केवल दूध और शक्कर का स्वाद नहीं ले रहे थे, गोपीनाथ जी के प्रेम का स्वाद कर ले रहे थे, खीर खा ली उन्होंने जो मटका था मटका तोड़ लिया, और मटका तोड़ के टुकड़े टुकड़े थे वो अपने कपड़े में लपेट के रखी, और रोज जो मटके की मिट्टी थी वो भी खाते थे, मिट्टी का खा रहे थे। तो वास्तव में उनके लिए वो मिट्टी की मटके की वो भी गोपीनाथ के प्रेम का प्रतीक था, तो इसलिए वो उनके खीर हो या मटका हो दोनों गोपीनाथ के प्रेम का स्वाद करते थे। तो अभी गोपीनाथ जी ने ऐसे क्यों किया, वो खीर क्यों उन्होंने जुलाई, अनेक कारण थे। एक तो हम देखते हैं कि भक्त थोड़ी सी इच्छा प्रकट करता है, अभी माधवेंद्र पुरी की इच्छा ये नहीं थी कि मुझे खाना है इतना अच्छा स्वादिष्ट होगा मैं भोग करूंगा, उनकी इच्छा ये थी कि मैं वास्तव भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, गोपाल जी ऐसे ही खीर बनाकर, और इतने दक्षे थे कि एक बार अगर कोई चख लेता है कोई व्यंजन उसने कैसे पी दिया होगा समझ लग जाती तो सेवा करते। तो अगर कोई भक्त सेवा करना चाहता है भगवान की तो भगवान बहुत सी सुविधाएं देते हैं, सेवा करना चाहते हैं जरूर मैं तुमको मदद करूँ, ये बस हमें इच्छा करते हैं, तो इसलिए भगवान ने वो खीर चुरा ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि
वही गिर पे अगर कोई मक्खी लग जाएगी तो भगवान क्या मक्खी तुम लगा रहे हो तो पुजारी का अपराध है, पुजारी ध्यान नहीं दे रहा है इसीलिए पुजारी गलती कर रहा है, तो भगवान कुछ नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे प्रेम नहीं है। पर अगर कोई प्रेम है तो भगवान क्या एक मक्खी लाना क्या पूरा भट्टा लाया कर लेंगे, क्यों क्योंकि प्रेम है वहाँ। तो इसके बाद में माधवेन्द्रपुरी का एक और व्रत था कि माधवेन्द्रपुरी की इच्छा थी कि वो ये थोड़ा सा माखन थोड़ा सा फिर चखे, पर उन्होंने अयाचित वृत्ति स्वीकार की। अयाचित वृत्ति मतलब कि वो किसी से कुछ मांगते भी नहीं थे। प्रेमामृते तृप्त क्षुध कृष्णा न ही बाधे, कहते हैं कि क्षुध कृष्णा वो प्रेम के अमृत से तृप्त रहते थे और वो भूख के कारण उनको लगती ही नहीं थी। तो क्योंकि वो उनका व्रत था कि वो कभी मांगेंगे नहीं खीर, तो इसीलिए भगवान नहीं चाहते थे कि वो उनका व्रत तोड़े। इसीलिए भगवान ने अपना जो रूप था वो रूप में सक्रिय हो गए और उनसे खीर चुरा ली। उसके बाद में सारी कहानी आते आए फिर जो माधवेन्द्रपुरी अभी जब वो निकल गए तो वो बड़े नम्र थे। जब सारी कहानी पता चलती उन्होंने सोचा कि अभी सब लोग मेरा गुणगान करेंगे, तो सब लोग मेरा गुणगान करेंगे तो फिर बोले सबका गुणगान सुनते सुनते क्या हो जाएगा, मैं माया में पड़ जाऊंगा, मैं मुझे भगवान का गुणगान सुना है उसका गुणगान भी सुनना है, तो इसीलिए मैं उसे चला जाऊंगा। देखते हैं कि भक्ति नम्रता है, अनंत जीव परमेश्वर कहते हैं कि ये भौतिकवादी व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत है। भौतिकवादी व्यक्ति का क्या भाव होता है कि अगर हम तो इसका गुणगान करता है तो और गुणगान करो, अयोर अयोर और गुणगान करते हो। कई बार कुछ अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके स्टाफ में एक आदमी को रखते हैं और आदमी का क्या नौकरी होता है, क्या करें उसका, उसके नौकरी का क्या उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि वो उनको अमीर व्यक्ति से मिलने आ रहा है तो जो मिलने आ रहा है उसको ज्ञान दे कि अमीर व्यक्ति इतना बड़ा है, ये किया और सुन रहा है, समझ रहे हो मैं कितना महान हूँ, समझो आपका अज्ञान अधिकार हो ताकि मैं अस्थि में कौन भी आप समझ जाओगे। तो ये भौतिकवादी व्यक्ति का भाव है और गुणगान करो और गुणगान करो, पर भक्ति होता है बिल्कुल गुणगान नहीं करना चाहता। तो वास्तव में हम सबको ये चुनाव करना होता है कि हम खुद का गुणगान सुन के आनंद ले सकते हैं या भगवान का गुणगान सुन के आनंद ले सकते हैं। और दोनों में फर्क क्या है कि बद्धावस्था में खुद का गुणगान बहुत अच्छा लगता है, पर समस्या क्या है कि हमारे साथ कोई ज्यादा गुण है नहीं गान करने के लिए, और दूसरी समस्या है कि हमारे गुण कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर कोई गान नहीं करता है। कोई बड़ा क्रिकेटर हो, कोई बड़ा स्पोर्ट्स स्टार, कोई बड़ा सुंदर अभिनेता अभिनेत्री हो, उनका सौंदर्य उनकी सक्षमता कुछ समय के लिए रहती है, तो जो हमारा गुण का गान है वो बहुत तुच्छ होता है, उससे थोड़ा सा आनंद मिलता है। पर अगर भगवान के गुणगान में ऋषि प्राप्त कर लेंगे तो हम सदैव आनंद हो सकते। तो चले माधवेन्द्रपुरी तुरंत वहां से चले गए, अगर चले गएंगे तो क्या हो गया, भले ही वे चले गए उनकी प्रतिष्ठा भी उनके पीछे हो गई। और गोपीनाथ जी ने क्यों किया, एक और कारण था, कई कारण थे, तीन कारण बनाया उसने। पहले बताया वे उनके भक्ति इच्छा पूरी करना चाहते थे, दूसरा बताया कि क्योंकि वे अयाचित वृत्ति स्वीकार की थी तो इसीलिए वे वास्तव में कुछ मांगने वाले नहीं थे। तो एक और महत्वपूर्ण कारण है कि जब वे पूरी जाएंगे पूरी आ गए, चंदन जो था वो चंदन बहुत कीमती है तो कोई उनको चंदन देता नहीं था, कौन चंदन देगा। तो एक कोई ऐसा ही सन्यासी आ गया है तो बोल रहा है कि मेरे सपने में भगवान आए थे और मुझे चंदन देगी, फिर कहते हैं अगर मान ली हमारे मंदिर में कोई आएगा और बोलेगा कि मेरे सपने में भगवान आए थे और उसने कहा कि आपके ट्रेजर आपके बैंक आपके मुझे जितना पैसा नहीं दे रहे कोई देगा, कोई हमारा कोई हमारा मंदिर में कोई मंदिर कोई देगा नहीं। तो माधवेन्द्रपुरी जो है वो ऐसे जाएंगे तो कौन उनको देगा ऐसी संपत्ति, कहे बड़ी संपत्ति क्या है, वो चंदन है कौन देगा, भगवान जानते थे समस्या है। तो भगवान जब कोई उपदेश देते हैं तो वो उपदेश कैसे पालन करना है उसकी भी योजना भगवान के पास होती है, पर भगवान इतना ही देख रहे हैं कि हमारी इच्छा है क्या वो पूरी कर देंगे, और वो आदेश पूरे करने की इच्छा है तो भगवान अपने आप शक्ति दे देंगे। तो भगवान ने क्या किया इस तरह से माधव चतुर्थी का बड़ा गुणगान हो गया क्योंकि वृंदावन और पूरी बहुत दूर थे, तो इसीलिए वृंदावन में इतना इतनी बड़ी घटना हो गई हो कि माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान आए हैं और उसके कारण भगवान प्रकट हो गए, मंदिर बन गया है। ये सब की जानकारी पूरी तक नहीं पहुंच पूरी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, पर जो बंगाल और पूरी है वो पास पास नहीं है, तो बंगाल में जो भी घटना होती है वो उसका उड़ीसा में पूरी में आसान से जानकारी पहुंच जाती है। तो इसीलिए भगवान ने लीला की फिर गोपनाथ बन गए थे ताकि उससे माधवेंद्रपुरी की जो महिमा थी वो उनके पहले पूरी में पहुंच गई। पूरी में पहुंच गई तो क्या हुआ, तो दस को वहां से वहां पे पहुंचे तो सब भक्तों ने आदर दिया उनको और उन्होंने कहा कि आपको चाहिए हम जरूर योजना करते हैं। तो सरकार राजा और एकदम चंदे उनको बोला कहते थे भगवान की इच्छा है तुम चंदन चाहिए, तो फिर नजर उनको चंदन दिया। माता जी ने ये नहीं सोचा कि भले चंदन लिया मैंने, चंदन उठाया पर मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं सब गए कुछ पालन करने के लिए। और क्या हो गया, आदेश पालन करने की तीव्र इच्छा थी तो भगवान ने योजना बना दी। तो क्या उनके साथ उन्होंने चार लोग भेजे, दो ब्राह्मण दो सेवक भेजी है और उनको बोला कि आप ये चंदन लेके जाओ। और अभी जब लेके जा रहे थे तो जिन हमें पूरी कहानी बताई और क्या होता है तो कहानी से पूरी नहीं हुए कि प्रभु ने नित्यानंद करह विचार, आप विचार करो पूरी सम भाग्यवान जगत नहीं तैयार कि इनके समान कोई भाग्यवान नहीं है। क्यों नहीं है कि प्रगाढ़ प्रेम स्वभाव आचार दिव्य दुख विघ्नादि ना करे विचार, कि जो प्रगाढ़ प्रेम होता है तो उसका क्या स्वभाव होता है कि भले कुछ समस्या है अपने जीवन में समस्या का बिल्कुल विचार नहीं करता और सीधा एकाग्र होकर भगवान की सेवा में लग जाता है। तो अभी चंदन तो ले लिया, चंदन लेके जाना है उससे अभी बहुत बड़ा और खतरा है। क्या खतरा है बता रहा था कि अब बंगाल में आ जाएंगे, बंगाल से जो वृंदावन के पास में आएंगे तो जो मुस्लिम राज्य में तो कुछ दूर लगे, इसीलिए गोपीनाथ जी भगवान ये समझे जानते थे। इसलिए जब वापस माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ मंदिर में आ गए, जैसे ही गोपीनाथ मंदिर में आ गए वहाँ के पुजारी ने जाकर उनको स्वयं खीर दे दी, बोले वापस भगवान को जोड़ने जोड़नी करनी पड़ेगी आपको, हम डायरेक्ट आपको दे देगी। और उन्होंने खीर स्वीकार की, थोड़ा सा ग्रहण किया, बाकी सब पुजारी जो भक्त उनको सबको दिया। और जब वापस रात को जब वो सो रहे थे तो पुनः भगवान के सपने में आ गए, फिर कितनी बार थे दूसरा तीसरा चौथा बार तीसरी बार सपने में आ गए। अरे बोले कि वास्तव में गोपाल और गोपीनाथ हम सब एक ही है, तो आप क्या करो गोपीनाथ को चंदन लगा दो, गोपाल को चंदन अपने आप लग जाएगा। तो भगवान ने ऐसे क्यों बोला, आना कारण है आप समझ सकते हैं बाह्य रूप से कि वास्तव में ये नहीं चाहते कि माधवेंद्रपुरी को इतना समस्या हो, सारा बहुत मुश्किल राज्य से लेके जाए वृंदावन तक चंदन, और मेरी भक्त की परीक्षा ली है, मैंने परीक्षा क्यों ली है इसलिए ली थी कि भक्त का गुणगान, तो भक्त का परीक्षा वो पास हो गया है उसका गुणगान भी हो गया तो और परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उन्हें कहा ना कि आप यही चंदन लगा दो, और फिर वो फिर उन्हें वो गोपाल गोपीनाथ जी को उनको चंदन लगाना शुरू कर दिया। और फिर इस तरह से उन्होंने चंदन लगाया और फिर वो क्योंकि तो गोपीनाथ जी इतना मधुर संबंध था उनका, तो वो वृंदावन गए वापस, उन्होंने जो सुंदर आराधना हो रही गोपाल जी को देखा तब इंतजाम कर दिया, वापस गए रेमुना गए और रेमुना में ही गए भगवान का स्मरण करते हुए भगवत धाम लौट गए। तो आज भी रेमुना में माधवेंद्रपुरी की समाधि है, सुंदर जगह है, रेमुना का प्रधान मंदिर है, उसके पीछे जो है वो माधवेंद्रपुरी की समाधि है वहाँ। तो जब माधवेंद्रपुरी अपने हंस दिनों में थे तो वे प्रेम की इतनी पराकाष्ठा में थे, तो जो राजधानी का चेतन कृष्ण से ग्रह भाव है वह भाव में दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ सदावलोक से हृदय तदलोक कातरम दैत भ्राम्य किं करोम्यहम् किं करोम्यहम्। राधा जी वहाँ कृष्ण के ग्रह में होती तो वो सोचती कि हे कृष्ण आप तो वृंदावन नाथ थे, आप तो मेरे हृदय के नाथ थे, पर एकाएक आपने छोड़ के मथुरा चले गए और मथुरा नाथ बन गए हैं, तो अभी मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, अलोक का करम जब मैं आपको देख नहीं सकती हूँ तो मुझे लग रहा है मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मेरे अस्तित्व का क्या उद्देश्य है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो बहुत ऊंचा विरह का भाव है राधानी का कृष्ण से, वही विरह का भाव माधुरी से कुछ दूसरे जागरूक हो। और क्यों जागरूक हो, क्योंकि जीवन भर उन्होंने इतनी दृढ़ता से और प्रेम से भगवान की सेवा की है। और फिर इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने आख्यान बताया और प्रसंग बताते हैं कि इस कथा से दो चीज निकलते हैं, प्रभु भक्त वात्सल्य और भक्त प्रेम सीमा। दो चीजें कि भगवान का कितना भक्तों से प्रेम है और भक्त का भगवान से कितना प्रेम है, दिखता है। जैसे लोग जब कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर में देखते हैं कोई लड़का लड़की प्रेम करते हैं, तो वो लड़का बोलता है तुम्हारे लिए मैं मेरी सारी जायदाद त्याग कर दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा ताकि हम दोनों प्रेम कर सके। तो वो लोग देखिए बोल रहे हैं इतना प्रेम है, तो वास्तव में वो प्रेम क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है। वो पहले जायदाद त्याग कर लेते हैं किसी अपने प्रेमी के लिए, बाद में प्रेम झुरा लेते हैं, प्रेमी को याद देते हैं। तो वो प्रेम नहीं है, वो केवल इंद्र तृप्ति है। वो जायदाद वगैरह त्याग कर रहे हैं प्रेम के लिए त्याग कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं। और जब देखते हैं कि इंद्र तृप्ति में व्यक्ति आता है तो फिर वो व्यक्ति को त्याग देंगे और इंद्र तृप्ति कहीं और देखने का प्रयास करेंगे। इसीलिए पाश्चात्य देशों में वो प्रेम विवाह होते हैं, पर प्रेम विवाह का परिणाम क्या होता है, घटस्फोट होता है, अवॉर्ड होता है। आजकल तो अमेरिका इंग्लैंड में जब विवाह होता है तभी वो विवाह चर्च में नहीं होता है, वो कोर्ट में होता है और वो पूरा मना लेते हैं, पूरा नियम बना लेते हैं कि एक साल के बाद डाइवोर्स होगा तो हमारी प्रॉपर्टी ऐसे डिवाइड होगी, दो साल के बाद डाइवोर्स होगा तो ऐसे डिवाइड होगी, पांच साल के बाद डाइवोर्स होगा तो इस तरह से प्रॉपर्टी का विभाजन होगा। तो ये उसे वो कहते हैं प्रेम का विवाह है, पर वो प्रेम वास्तव में नहीं है, केवल दुर्दी है। पर मुझे वो इतना लोग आकर्षित क्यों होते हैं उसकी ओर, क्योंकि प्रेम हमारे हृदय की असली मांग है। और जो भगवान उनके भक्तों की लाम सुनते हैं तो हम देखते हैं कैसे है, वो प्रेम का असली आदान प्रदान भक्त और भगवान के बीच में होता है। और हम देखते हैं कि भक्त भले जो विग्रह है वो निष्क्रिय है पर अपने भक्त के लिए वो सक्रिय हो जाते हैं, और भले ही भक्त बूढ़ा है अशक्त है पर फिर भी वो बड़ा साहस करके असंभव कार्य करने का तैयार हो जाता है। तो यह भक्त और भगवान के प्रेम का निश्चय आदान प्रदान है। और जैसे माधवेंद्रपुरी महान भक्त थे और उन्होंने इस तरह से जो गोपाल जी को प्रकट किया, वैसे ही शिव गोपाल जी एक महाभागवत भक्त थे और शिव गोपाल जी ने क्या किया, इस तरह से उन्होंने भी चार गुण देखे कि यू आर पर्सनल अनअज्यूमिंग रिलायंस और इंटेक्ट, हम चार गुण प्रभुपाद जी देखे फर्स्ट पर्सन प्रोग्राम देंगे। प्रभुपाद जी का भगवान से संबंध का बड़ा व्यक्तिगत संबंध था, वो भले प्रभुपाद जी हमेशा मुझे प्रवचन देते हैं वो मूल तत्व ज्ञान से कृपा करते थे, आप शरीर नहीं हो आत्मा हो आप दुखों से क्लेशित हो रहे हो। पर जब प्रभुपाद जी बम्बई में उनको मंदिर बनाना था तो फिर क्या हुआ, जो आधा प्रास बिहारी का विग्रह था तो उन्होंने उनको स्वयं प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपसे मंदिर बना जाता हूँ पर मंदिर बना नहीं, तो अभी छोटा सा टेंट बनाया हुआ है आपको थोड़ा सा झोपड़ी जैसे ही बनाया था तो आप मंदिर यहाँ पे आके ठहरे लो और मैं जरूर आपसे मंदिर बना। और अगर आप विराम लोग पढ़ते हो तो प्रभुपाद जी को इतनी समस्याएं हुई कभी वहां का जो मालिक था वो बड़ा बेईमानी करके वो पैसे भेजना चाहता था और जमीन भी हड़पना चाहता था, प्रभुपाद जी योद्धा के समान बोले कि नहीं तो भगवान के लिए अर्पित किया वापस नहीं ले सकते। तभी जो भक्तों पे आक्रमण हुआ, भक्तों पे बड़ा अत्याचार हुआ तो प्रभुपाद जी बड़े दूर रहे और योद्धा के समान अंत में उन्होंने भगवान के सुंदर मंदिर बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि मंदिर भगवान का उनका व्यक्तिगत व्रत था, भगवान कहते मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा। तो बहुत ले जाते हैं, तो प्रभुपाद जी दक्षिण अमेरिका में गए थे तो पहली बार गए हुए और वहां पे मुझे पहुंचे बहुत मत कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे गा रहे थे और फिर वहां पे सुंदर छोटे से सुंदर गौरी भाई के विग्रह थे, जो गोविंद के विग्रह देखे द्रौपदी जी ने वहां पर प्रणाम किया तो उनकी आंखों से प्रेमाश्रु आने लगे और फिर उन्होंने गौरताय के लिए गुणगान करते हुए वैष्णव जब पाया फिर प्रवचन देने लग गए तो प्रवचन देते देव उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले कि ये गौरता इतने कृपालु है चैतन्य महाप्रत्यानंद कि आप थोड़ी सी उनकी सेवा करने का प्रयास करो वे आपको शुद्ध कर देंगे दिव्य आनंद दे देंगे उनके समान कृपालु और बढ़ने की दुनिया में तो ये सोचते थे मैंने इतनी बड़ी संस्था बनाई है कभी नए राष्ट्र के केंद्र बन गया है कोई गर्व नहीं था हम लोग जैसे कि ये सब गौर दिखाई चैतन्य महाप्रभु की कृपा है नित्यानंद की कृपा है और वे इतने कृपालु है और वे कृपा के बारे में सोचते उनके आप में आप रूपा जी हमारे मन का कृष्ण अगर आप मार्गी ने भागवत धर्म लिखे हैं वो पढ़ते हैं जब जन्मभूमि में है तो भगवान से प्रार्थना कर रहे प्रभु मैं तो कुछ जानता नहीं भक्ति नहीं वैराग्य ज्ञान नहीं है अगर आप चाहते हो कि ये सब जीव का उद्धार हो जाए तो मैं जो वाणी बोलूंगा कृपया आप उनके हृदय में हो उनको ये वाणी समझने दो और दूसरे आपकी इच्छा के द्वारा सब लोग माया में आ गए अगर आपकी इच्छा होगी तो आप माया से उनको उठा सकते मैं केवल आपके हाथ में प्रकृति हूँ आप जैसे चाहो मुझे उठा सकते ये ब्रह्मा जी का बड़ा व्यक्तिगत था ब्रह्मा जी जयमला क्या थी कि बड़े ही सारे उन्होंने ऐसी संस्था बनाई 108 जिले बनाए दर्जनों किताबें लिखे हजारों की मात्रा में लोगों को भक्त बनाया सारे विश्व के दर्जनों बार उन्होंने प्रचार करते हुए दौरे किए और वो इतने नम्र थे कि जब उनको बहुत पूछता था एक बार एक अमेरिका से बहुत बड़े पोएट कवि थे बड़े कवि थे तो उन्होंने भक्ति ने पूछा कि आप उनके एक व्यक्ति ने द्रौपदी जी क्या आप उनके गुरु हो तो द्रौपदी ने मैं किसी का गुरु नहीं हूँ मैं सबका सेवक हूँ मैं सबका सेवक हूँ यही द्रौपदी जी का हमेशा भाव था मैं सबका सेवक हूँ तो ये प्रभुपाद जी की नम्रता थी भक्तों के हृदय को जीत लेके भक्तों के सब और प्रभुपाद जी का बयान क्या था कि प्रभुपाद जी वृंदावन में रह रहे थे और उनके लिए वृंदावन बड़ा सुंदर जगह था वही सब जगह भक्त के सुंदर विग्रह थे और भक्ति में वातावरण था तो भौतिक व्यक्तियों के लिए क्या वगैरह में होता है कि अपना आराम से घर है घर में टेलीविजन है टेलीविजन में क्रिकेट मैच चल रहा है उसको के मंदिर में आना है कीर्तन करना है उसके बड़ा वैराग्य लगता है पर भक्त के लिए मंदिर छोड़ के बाहर जाना एक बड़ा वैराग्य लगता है इस मंदिर में आकर्षण है बाहर तक लोग जो है माया में है भगवान का स्मरण नहीं कर रहे भगवान में रुचि नहीं है तो द्रौपदी जी का इतना वैराग्य था कि वृंदावन छोड़ के चले गए भगवान को छोड़ा नहीं उन्होंने भगवान को हमारे अपने हृदय में लिख ले तो वृंदावन को छोड़ा नहीं उन्होंने वृंदावन अपने हृदय में लिख ले सारे विश्वभर ने वृंदावन तो अब द्रौपदी जब अंत में जब उनका अंतिम समय आ गया तो पुनः वृंदावन में आ गए और फिर वे केवल चरणाम कई महीनों तक सिर्फ चरणामुक्ति के लिए रहे और वो बोले कि हमने सब कुछ सिखाया आपको कैसे प्रचार करना है कैसे कीर्तन करना है कैसे निग्रह की पूजा करनी है पर अपनी अंतिम शिक्षण आपको लेना कैसे भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग और वह शिक्षण दे दिया द्रौपदी ने भक्तों को और फिर अंतिम समय तक वो जप कर रहे थे कीर्तन कर रहे थे ये भाषण में भागवत का भाषांतर का तात्पर्य दे रहे थे और फिर और जिनको पूछा गया अंत में कि आपको कोई आखिरी इच्छा है द्रौपदी ने कुछ इच्छा नहीं है कुछ इच्छा नहीं पूरा विराज देता था तो भगवत धाम लौट गए और उनका दूर संकल्प था क्या दूर संकल्प था वे बूढ़े थे 70 साल के कुछ पैसा नहीं था उनके पास फिर भी अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करेंगे अकेले अमेरिका चले गए और ये चित्र है द्रौपदी जब अमेरिका में थे पटलर पेंसिल्वेनिया में वहां पे एक अग्रवाल परिवार था उनके घर में द्रौपदी रह रहे थे और उनके घर में भी कर रहे थे द्रौपदी तो इतना एक एक दूसरे का उनका एकाधाया एक ही कि वहां पे वो रह रहे थे पर वो सोच रहे सारे विश्व में प्रचार करते सारे विश्व में मंदिर बना लिए तो साधारण कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो वो अपने घर का जो घर के सामने जो रास्ता है रास्ता भी अकेला पार करने के लिए डरता है तो अपने साथ में आ जाओ फिर आप लेके जाओ मेरा तो द्रौपदी जी अकेले न केवल रास्ता पार कर सागर बड़े सागर के साथ सागर पार करने चले
पर प्रभुपाद जी अकेले नहीं थे, भगवान कृष्ण गुरु के साथ थे। वो जो उनका दृढ़ संकल्प था, दृढ़ संकल्प के कारण प्रभुपाद जी को दिल का दौरा पड़ गया जलदूत में, तो भगवान स्वयं उनको सपने में आ गए, बोले चिंता मत करो मैं स्वयं लेके जाऊंगा और तुम्हारे लिए अमेरिका में सारा योजना में बना दी है, तुम्हारे से परीक्षा हो रही थी, तुम पर बात कर रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ तुम्हारी प्रचार हो जाए, तुम निसंदेह होकर जाओ। अभी दशावतार का लक्षण दिया भगवान ने उनको, और फिर प्रभुपाद जी जब उसके बाद में गए तो जो उनके पूरी जो जहाज थी उसके कप्तान थे अर्जुन पांड्या, वो बोले कि मैं 40 साल जहाज चला रहा हूँ भारत अमेरिका के बीच में, पर सागर था अटलांटिक सागर था वो इतना शांत अभी तक कभी भी नहीं था। तो प्रभुपाद जी बोले कि हाँ भगवान कृष्ण सागर के नियंत्रण है और उन्होंने सागर को शांत कर दिया है। तो क्या पांड्या की भक्ति थी, बोले स्वामी जी आप हमारे साथ वापस आ जाओ, वापस सागर शांत रहेगा। प्रभुपाद जी बोले भगवान ने सागर शांत इसलिए नहीं किया कि मैं वापस आ जाओ, इसलिए वहां पर प्रोत्साहन कर जाते और सारे जैसे भगवान ने परीक्षा ली हरेंद्रपुरी के बाद गुरुनाथ के गोपीनाथ के रूप में, गोपीनाथ के रूप से गोपाल जी के रूप से थे ही प्रभुपाद जी ने जब भगवान परीक्षा जी को उत्तीर्ण किया तो क्या हुआ, ऐसे अनेक सैकड़ों सैकड़ों के रूप में भक्त रखे भगवान और उन भक्तों के द्वारा सारे विश्वभर में विचार हो गया और वो उसकी शुद्ध भक्ति है, उनका ही फल है कि आज हम जो भगवान की लीला का श्रवण कर पा रहे हैं और इस तरह से हम भी भक्ति के मार्ग में अग्रसर होकर हम भी आशा कर सकते हैं शुद्ध होकर हम प्रभुपाद जी की भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम भी एक दिन बहुत हम लौट सकते हैं। ये सब जो है हमारे लिए एक राजमार्ग बना चुके हैं और जो महान भक्त है आचार्य हमें सिर्फ उस राजमार्ग चलना है और चलते किस तरह से है, हमें जो हरे कृष्ण महामंत्र का जब है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण महा ध्यान करते हैं विचार में और उसका पालन करते हैं तो उसे हम सब प्रगति करके भगवत धाम प्राप्त करते हैं। सारांश में मैं चर्चा किस तरह से जो भक्त है वो भगवान से आदान प्रदान करते हैं प्रेम। सबसे पहले हमने देखा कैसे अलग अलग धर्मों में सबका उद्देश्य एक है, भगवान के बारे में ज्ञान देना, भगवान का प्रेम जागृत करना। तो कुछ बाहरी चीजें हैं जो अलग होती है पर जो अंतर में उद्देश्य एक होता है। अगर बाहरी चीजें का अलग हम देखते हैं तो उससे हम झगड़ा कर सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं धर्मों में, अंतर में उद्देश्य एक हम जानते हैं तो झगड़े नहीं होंगे। पर जो वैदिक शास्त्र है उसमें भगवान के ज्ञान का जो वर्णन है, भगवान के रूप का, भगवान के ज्ञान का, भगवान के धाम का, वो कोई और शास्त्र में नहीं है। देखा कैसे जब हम भगवान के विग्रह के रूप में पूजा कर रहे हैं तो वो मूर्ति को कोई पत्थर की पूजा नहीं है। हमें कई उदाहरण देखें कैसे जो पोस्ट ऑफिस या 5,000 रुपए की नोट है वो साधारण नहीं है क्योंकि उसे सरकार मान्यता है। वैसे शास्त्र मान्यता जिस रूप को है बहुत साधारण नहीं है, भगवान का ही रूप है। और हम देखा कैसे जो भगवान का रूप है वो कोई भगवान का विग्रह है कोई झंडे के समान नहीं है, वो एक उचित फोटो के समान है वो। और फिर भगवान भले ही असीमित है पर उनके असीमित कृपा के कारण वे सीमित रूप में प्रकट हो सकते हैं, उनकी भक्ति की कृपा है। और भगवान विग्रह के रूप में अपनी सर्वशक्तिमत्ता नहीं दिखाते हैं, वे प्रेम दिखाते हैं और प्रेम के कारण वे नियमों को तोड़ सकते हैं। जैसे कि माधव जी ने किया, भगवान साधारण का विग्रह के रूप में निष्क्रिय रहते वे सक्रिय बन गए। और फिर हमें विस्तारित रूप से माधेन्द्रपुर की लीला का चर्चा किया और माधेन्द्रपुर के गुण थे प्रभुपाद जी लीला कैसे उनका व्यक्तिगत संबंध था, तो उनका भगवान जो कैसे बड़े नम्र थे, बड़े गृहस्थ थे और बड़े दृढ़ संकल्प थे। हमारा माधवेन्द्रपुरी श्री गोपीनाथ भगवान की श्री प्रभुपाद की गौर भक्त की गौर
क्या कोई सवाल है?
कोई सवाल है पूछना चाहेगा?
हरे कृष्ण।